नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से होगा शुरू। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को बजट पेश करेंगे। पुलिस मुख्यालय प्रदेश में सामूहिक आंदोलन से निपटने और भीड़ नियंत्रण के लिए नया मानक संचालन प्रणाली बनाएगा। और पारंपरिक श्रद्धा के साथ आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। गंगा समेत अन्य नदियों और सरोवरों में लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे से संबंधित इकरारनामा प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही वर्षों से लंबित इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि अब सोन नदी से बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी जबकि झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा।
बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को एवं शेष 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने एवं तदनुसार केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार द्वारा निर्गत इकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति आज दी गई। इससे अब इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा।
कैबिनेट ने पीएम श्री योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 779 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 14.85 अरब रूपये की राशि को मंजूरी प्रदान की है। श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए चिन्हित 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 138 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के निर्माण के लिए लगभग 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने हेतु 138 करोड़ 82,88,000 रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 के तहत योजनाओं के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण का जिम्मा बिहार विकास मिशन को सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति को शर्तों के साथ 2-2 बंगलों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री रहे वरिष्ठ विधानमंडल सदस्यों को भी कुछ शर्तों के साथ मानक किराए पर अतिरिक्त बंगले आवंटित किए जाएंगे।
बिहार विधानमंडल के वरिष्ठ माननीय सदस्यगण जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं, को विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार क्रमांकित आवास के अलावा पटना केंद्रीय पूल से कुल 15 आवासों को मानक किराया पर अतिरिक्त आवास के रूप में सशर्त आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट सत्र 25 फरवरी तक चलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने बजट सत्र की तारीखों को मंजूरी दे दी है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। बिहार में 7 निश्चय 3 के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को अब घर पर ही जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री करने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह सुविधा 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई के माध्यम से निबंधन की सुविधा प्रदान की जाएगी। निबंधन की प्रक्रिया 7 कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस संबंध में 19 जनवरी तक सुझाव भी मांगे हैं। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रदेश में किसी भी सड़क पर दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित देश भर के परिवहन मंत्रियों की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने पटना में बताया कि यह सुविधा पूरी तरह कैशलेस होगी। श्री कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों को 25,000 रूपये का इनाम दिया जाएगा। कला एवं संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि पारंपरिक लोक कलाओं, लोक गीतों और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि विलुप्त हो रहे लोक गीतों और परंपराओं का संरक्षण आवश्यक है। श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य में फिल्म प्रोत्साहन नीति बनाने के लिए विशेषज्ञों से बातचीत की जा रही है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि प्रदेश में शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार नई नीति लाएगी। उन्होंने पटना में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नई नीति से शहद उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में शहद उत्पादन देश का 12.30% है। प्रदेश का मधु उत्पादन लगभग 18,600 मीट्रिक टन है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि प्रदेश में सामूहिक आंदोलन से निपटने और भीड़ नियंत्रण के लिए नया मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनाया जाएगा। उन्होंने पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सामूहिक आंदोलनों का उभरता स्वरूप आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहा है। DGP ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए जनता के साथ पूर्ण सहयोग और विश्वास हासिल करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पेशेवर कार्यशैली से जन विश्वास हासिल किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम को लेकर विपक्षी दलों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी CAA NRC के मामले की तरह ही इस अधिनियम को लेकर भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण भारत में रोजगार और विकास की तस्वीर बदलने वाला है। उन्होंने अधिनियम के लाभों को भी रेखांकित किया।
इसमें सबसे पहले तो जो 100 दिन का पहले पुराने प्रावधान था उसको सीधा जम मार के 125 दिन किया गया है। दूसरा, उसमें अगर एक्ट के प्रावधान के मुताबिक रोजगार प्रदान नहीं किया तो दंडित होगा। इसी प्रकार से इसमें एक जगह ऐसा नहीं छोड़ा जहां से पैसा का गलत तरीके से इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार करें। डिजिटली सारा व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा।
प्रदेश में आज मकर संक्रांति का त्यौहार हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि श्रद्धालु पवित्र स्नान के बाद पूजा पाठ कर दान पुण्य कर रहे हैं। प्रदेश के कुछ इलाकों में मकर संक्रांति का पर्व कल भी मनाया जाएगा। इधर प्रशासन ने विभिन्न नदी घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF की तैनाती की गई है। पटना और बक्सर सहित अन्य जिलों में एहतियात के तौर पर गंगा समेत अन्य नदियों में नावों का परिचालन आज और कल बंद कर दिया गया है। वहीं आज से खरमास भी समाप्त हो जाएगा और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं 5.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर बिहार के जिलों के 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का संभावना है। तत्पश्चात क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है।
केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने कहा है कि बिहार में दलहन के उत्पादन और इसकी खरीद की ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बिहार में दलहन के उत्पादन की काफी संभावना है और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। श्रीमती खरे ने कहा कि देश में गेहूं और चावल की तुलना में दाल की खपत बढ़ रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो राज्यों को कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए भारी मुआवजा देने का आदेश देगा और कुत्तों को खाना देने वालों को जवाबदेह ठहराएगा। न्यायालय ने पिछले 5 वर्षों से आवारा पशुओं से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन में कमी पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए कुत्तों को खाना देने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने सासाराम मुख्य डाकघर कार्यालय में कार्यरत पोस्टमैन श्रीलाल को 30,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। अररिया जिले का 36वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई, मैराथन दौड़ समेत अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कटिहार सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रद्युम्न सिंह यादव ने कालाबाजारी के आरोप में जन वितरण प्रणाली विक्रेता चंदन महतो का लाइसेंस रद्द कर दिया है। विक्रेता के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। और अब खेल की खबरें। नई दिल्ली में खेली जा रही 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप के बालक वर्ग में बिहार के अमित कुमार ने अंडर 29 भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। प्रथम महामना हॉकी गोल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 21 जनवरी तक राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान में होगा। परिवहन मंत्री सह बिहार हॉकी संघ के अध्यक्ष श्रवण कुमार ने ट्रॉफी और शुभांकर का अनावरण किया। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल राउंड के लिए 15 सदस्यीय बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। शकीबुल गनी को टीम का कप्तान बनाया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने कैबिनेट की खबर पर लिखा है, राज्य में 789 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लैब बनेगी। दैनिक जागरण क्विक कॉमर्स कंपनियों से जुड़ी खबर पर लिखता है, डिलीवरी बॉय पर नहीं होगा 10 मिनट में सामान पहुंचाने का दबाव। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मधुबनी जिले के पंडौल पावर ग्रिड में धमाका, इंजीनियर समेत 4 कर्मचारी झुलसे, 2 की हालत गंभीर। प्रभात खबर लिखता है, नितिन नवीन का राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष बनना तय, 19 को नामांकन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से होगा शुरू। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को बजट पेश करेंगे। पुलिस मुख्यालय प्रदेश में सामूहिक आंदोलन से निपटने और भीड़ नियंत्रण के लिए नया मानक संचालन प्रणाली बनाएगा। और पारंपरिक श्रद्धा के साथ आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। गंगा समेत अन्य नदियों और सरोवरों में लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।